नहीं गया। एक साधारण मछली जल के अभाव में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को दे देती, और मैं अभी तक बचा हुआ। रामचंद्र जी के लिए दशरथ जी राम राम तीन बार कहे और बस हो गया। प्रिय क्रीड़ा वनभूमौ सदा निवसत तनुयात एवं संपद्यते चिरात अचिरात भुवन। इसलिए गोप कुमार, कृष्ण की ये जो लीला भूमि है, कृष्ण की लीला भूमि जहां उन्होंने क्रीड़ाएं की थी, कहां लीलाएं की? गोकुल, इसके बाद में वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, काम्य वन, नंदगांव, बरसाना,
संकेत,
संकेत, प्रेम सरोवर, कोकिल वन, मैंने 84 क्रोश में सर्वत्र उन्होंने, उधर में बद्री नारायण, केदारनाथ, धर्म की लीलाएं, किंतु सरस मधुर लीलाएं जमुना के इस पार भी सबसे अधिक वृंदावन, वृंदावन में सबसे अधिक गोवर्धन, गोवर्धन से अधिक राधाकुंड श्याम कुंड, उधर में नंदगांव, बरसाना, ये सब कुछ इसमें सरस लीलाएं हुई। इन्हीं क्रीड़ा भूमि में सदा वास करें, प्रेम पूर्वक इसका अनुष्ठान करें, इससे शीघ्र ही निश्चित रूप में प्रेम प्रेम जरूर सिद्धि होगी। और वहां रह करके क्या करनी है? 5 चीज करना चाहिए। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास माने वो स्थान वास, और इनमें 5 में से कोई एक भी हो। नाम संकीर्तन मुख्य है, साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरा में आता ब्रज में वास, नाम संकीर्तन और श्रद्धा पूर्वक मूर्ति का सेवन। यदि कोई अपराध न हो तो निश्चित रूप से करे कृष्ण प्रेम अवश्य। तो यही बतला रहे हैं कृष्ण के जो लीला विहार की भूमि है उसमें भी क्रमशः श्रेष्ठ तत्व है। गोकुल में जन्म लीला और उसके बाद में बाल लीला, वृंदावन में कुमार लीला, और वृंदावन के क्षेत्र में भी, और नंदगांव, बरसाना, और इधर में किशोर लीला इत्यादि, जहां पर जैसी लीलाएं हुई है ठीक उसी तरह लोगों को लोग देगा। निर्जन में वास करे, निर्जन मैंने अपने भावों के प्रतिकूल जो भाव जहां पर और संग है वहां मत रहे, इसको कहते हैं निर्जन। हम लोगों का यहाँ पर निर्जन स्थान अभी है, क्यों? अभी सब लोग इस ग्रंथ के भाव में ही निविष्ट है, बस एक भाव है, एक भाव से सुन रहे हैं। और जहां ये कथा से जरा हटे तब देखे 1000 प्रकार की भावनाएं सब। अभी तक का निर्जन है, कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं है, किंतु जहां कथा समाप्त हो गई और बस देखेंगे सब राधे बोलने चलने लगे, निर्जनता खत्म हो जाएगी, एक तरह का भाव नहीं है। इसलिए भावों के प्रतिकूल यदि व्यक्ति रहे तो वहां पर निर्जनता नहीं। और सबसे दुष्ट संग है मन, दुष्ट मन का संग। यदि दुष्ट मन है, मन दुष्ट है, और वो भी रहे अकेले में भी तो वो निर्जनता नहीं है। यदि मन को उसके अनुकूल बना लो तब तो वो निर्जन। इसलिए हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी सब किस प्रकार से जीवन निर्वाह करते, कभी राधा कुंड, कभी श्याम कुंड, कभी गिरिराज गोवर्धन, किंतु इनमें परस्पर सब समय मिलन रहता था। ऐसे ही भागवत पाठ के समय सभी लोग मिलते जुलते थे, अपने साधनों का आदान प्रदान होता था, और परस्पर परस्पर को आदर जत्न करते, किंतु भजन के समय में निर्जन ना देते, कोई किसी का भाव के विपरीत चीज ना आए, लड़ाई झगड़ा, एक रोटी मेरे भाग में अधिक आ गई, और उसको दूर करते निर्जन में। और कैसे निष्किंचन हो करके, ये टीका में इन्होंने बतलाया है, तस्य श्री कृष्ण क्रीड़ा भूमि वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोरव गिरिराज, निर्जन में वास करें। प्रेम साधन का अनुष्ठान करना पड़ेगा, दिन रात इसी की चिंता है। वहां होने से ये निश्चित रूप में शीघ्र ही ये प्रेम प्रकाशित होगा। किंतु कब? कितन प्रभावे स्मरण हैवे से काले निर्जन भजन संभव। गुरु वैष्णव के निकट ये सब सुने समझे और कीर्तन करे, उसके द्वारा चित्त निर्मल हो जाएगा, तब ऐसा भाव होगा। और नहीं तो निर्जन में रह करके क्या करेगा? पैर ऊपर करके सोएगा, कोई बात बतलाने वाला है नहीं, बोलने वाला है नहीं, खूब खाया पिया भिक्षा करके ले आया और सो गया। और उसके बाद में कोई चर्चा करने लगा, कुछ पैसा साधन करने लगा, जो कुछ पैसे आ जाए। दूसरे साधु ने देखा जी ये पैसा रोजगार करता है, बस लड़किया से मारामारी दोनों में आरंभ, नंदगांव बरसाना ये सब में वृंदावन में यही सब होता है। जब ये अपने के लिए जाते हैं तो फिर पाप की कमाई हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शब्द से दरिद्रता नहीं बोझो, भगवान अनुग्रह करके उसे दरिद्र बना देते हैं। जब कुबेर जी के पुत्र नंदकुमार मनुग्रीव, बड़े धनी आदमी, बड़े सुंदर वैभव, कुबेर जी का सारा वैभव उनके पास, इसलिए बड़े अहंकार में थी, जो नहीं करना चाहिए वैसे सब काम करने लगे। भगवान ने नारद जी ने उनको देखा जिस पर कृपा करनी चाहिए, बस उनको बना दिया पेट, कोई डाली काट ले, कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले, कुछ कह नहीं सकते, अपने कर्म का भोग समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, कुछ करने का उपाय नहीं। कोई हाथ काट लेता है, कोई पूंछ काट लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कुछ करने का उपाय नहीं। दरिद्र बन गए तीन दिन में। तो कहते हैं कि जैसे उस दरिद्रता को किंतु दीनता मत समझो, उसका नहीं, ये तो जोर करके किया गया है। दरिद्र होने पर दीनता आती है, बात ठीक है, किंतु फिर यदि धन हो जाएगा ना, फिर ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए ऐसी दीनता नहीं। सब परिग्रह त्याग, जो कुछ भी कोई देता हम नहीं लेते हैं। अब भाई देने से ही तो वैभव हो जाएगा, किसी ने कुछ रुपया दिया नहीं दिया, किसी ने कोई फल दिया नहीं दिया, किसी ने कोई कुछ भी दिया नहीं दिया। माधवेंद्र पूरी पार्टी थे ना, किसी से कुछ मांगा नहीं, ना नहीं दिया, भोजन के लिए जब जरूरत पड़ी तो कुछ नहीं, अपने लिए कहीं आश्रम बनाया ऐसा तो सुना नहीं जाता, कहीं भी आश्रम। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड में रहते थे, पेड़ के नीचे एक कुटी भी नहीं बनाई। सनातन गोस्वामी जी ने देखा जी एक बाघ बाघिनी आकर के उसी घाट पर पानी पी रहे हैं, वो पासी में बैठे हुए हैं और राधा कृष्ण के लीला में तन्मय। अरे ये कहीं बाघ न मार डाले, अरे रघुनाथ लड़के के समान मानते थे, अरे बेटा तेरे लिए मैं एक कुटी बना। बस उनके नहीं कहने पर भी जोर से उनको पेड़ों की डाल से पत्तों से उनको एक फूस का पानी की चीज में लेते थे, चांदी के ग्लास में, राजा के लड़के तो थे, वो मट्टी के करुए से पानी रखते, कोई चुरा भी न ले जाए, कोई आदमी चुराएगा मट्टी का, ये तो जूठा, उसी से पानी पीता है, उसी से पेशाब करने भी जाता है, उसी से ये सब, कोई भी नहीं लेगा। और यदि कुछ धातु का कोई भी चीज रखा, एक मिनट न रहेगी, मारेंगे पीटेंगे और पी जाएंगे, बस करुआ रखा, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको कोई ले सके। तो इसको कहते हैं दीनता, ऐसा ही हम करेंगे, हम किसी से कुछ नहीं लेंगे और फरुआ रखेंगे, इतना तक कपड़ा पहनेंगे, तेल नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया ना दीनता, या वैराग्य नहीं, भीतर में जो स्रोत चल रहा है, ऐसा करने से लोग हमारे कहेंगे आओ ये भजन करने वाला ब्रज में सबसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति है। भजन थजन से कुछ होता नहीं है, ऊपर का बाना पहन लिया, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं। अकिंचन अथवा निर्भाव निरभिमानित्व, इनमें से कौन सी चिंता ग्रहण करनी? भाई इसमें से कोई नहीं। वास्तविक रूप में जब भक्ति होगी अपने आप चिंता आएगी, वही चिंता इसके लिए भूषण है। किंतु जब तक नहीं आती है तब तक यथा योग्य इसको करना पड़ेगा, मन से भी कुछ वैसे ही वाणी बोलनी पड़ेगी, कुछ वैराग्य भी रखना होगा जो भक्ति का विरोधी न हो जाए और हमारे लिए कोई विघ्न उपस्थित न हो, ये सभी करना पड़ेगा। किंतु सद्गुण युक्त होने पर भी जिनको कुछ भी अभिमान नहीं है, अपने को दीनहीन समझते हैं, यही यथार्थ। सनातन गोस्वामी राजा के महामंत्री, परम सुंदर, परम बुद्धिमान, धनवान, चिंतामणि उनके पास में रखी है और दीनहीन, ब्रजवासियों में मिल जाते थे, पगड़ी बांध लिया, यहां तक कपड़े पहन लिए और अपने भजन को प्रकाश नहीं होने देते। गांव में जाते, अरे भैया तुम्हारी बहू ठीक है, शादी हो गई तुम्हारे लड़के की, तुम्हारे लड़की की शादी हो गई, तुम्हारे बैल ठीक है, सुना था कि उनको कुछ हो गया है, भैंस दूध देती है, ये सब बातें कह करके और उनसे प्रेम पूर्वक ऐसे घुल मिल जाते थे मानो उन्हीं के अपने, इसलिए सब लोग उनको बड़े गोसाई जी कहते थे, बड़े गोसाइयां, बड़े बाबा आ गए, बड़े बाबा, भजन को बड़े छिपा कर रहे और सभी लोग जानते थे ये बड़े बड़े भजन से, और उन लोगों से तो ऐसी बातें करते थे कि, और इसके बाद में जब चले जाते भगवान के भजन में एकदम तन्मय हो जाते, उन्हीं की शुद्ध रूप मुक्त हो जाते, इसलिए अपने भजन को कहीं भी प्रकाशित न करते थे और इसी रूप में रह करके। एक गांव में जाते तो दूसरे गांव वाले सुनते सनातन गोस्वामी आए, सब लोग आकर वहां पर मिल जाते थे, चरणों में गिर जाते थे, बड़े बाबा आ गए हैं, बड़े साधु महात्मा जी आ गए, बड़े गोसाइन, इसलिए भजन होने जब होने लग जाएगा तो अपने आप प्रेम जब उत्पन्न होगा तो अपने स्वाभाविक आएगी दीनता, किंतु उसके पहले जब तक नहीं प्रेम होता तब तक भी कुछ कुछ ऐसे लाने की चेष्टा करनी चाहिए और उन जैसे बतला वैसा करनी चाहिए तो ब्रज का भाव आएगा और नहीं तो ब्रज का भाव नहीं आएगा। इस सब का विचार अब जो है कल हम बतलाएंगे।
आज 22/6/87 तारीख श्री नारायण गोस्वामी महाराज गोपियों की विरह अवस्था के बारे में कह रहे हैं। उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियां उनको उत्तर दे रही हैं।
हमारी कैसी स्थिति है, वो आराधे ईश, अब इस जो कहते हैं जो ब्रह्मव्यापी है और समस्त जगत का संचालन करने वाला जो भगवान है ईश है, अब उसकी आराधना दूसरे मन से कैसे करें, मन तो कृष्ण के साथ में चला गया, अब तो बिना मन की हम हैं, अब तो आप कहते हैं उपदेश से ये आराधना करें। भाई अति शिथिल सब है माधव बिन, यथा देह बिन ईश, जैसे शरीर बिना शीश के रहता है, यदि सिर काट लिया गया तो शरीर की स्थिति कैसे होती है, एक दो मिनट क्या होगा, छटफट करेगा, बकरे की बलि बंगाल में देते हैं ना, या जयपुर में भैंसों की देते हैं और कहां कहां कैसे कैसे काटा और छटपट छटपट करने लगता होगा और थोड़े देर के बाद में बस शांत। ऐसे कृष्ण गए, हमारा शरीर बिना शीर का हो गया, पहले तो छटपट की और उसके बाद में फिर सब कुछ शांत। अब तो हम लोग सब प्रकार से अब शिथिल हो गई हैं, श्वासा अटके रहो आशा लगी जीव कोट बरीस, अब तो हमारे प्राण कहाँ अटक रहे हैं, आशा में क्या आशा, कल परसों तक मैं आ जाऊंगा। कृष्ण जाते समय में बोले थे तुम लोग शोक मत करो, मैं थोड़े जा रहा हूं, मैं जा नहीं रहा, मेरा शरीर जा रहा है किंतु मन हमारा यहीं पर रहेगा तुम लोगों के साथ, और मैं जाऊंगा कल ही कंस को दंड दे करके और मैं जल्दी से लौट आऊंगा, कल या परसों तक आ जाऊंगा। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि कृष्ण झूठ बोलेंगे नहीं, जब कहें जब परसों आऊंगा तो जरूर आएंगे ही, बस वही आशा लगी हुई है कि कृष्ण आएंगे, बस इसीलिए प्राण धारण किए, हृदय में आग जल रही है, श्वासा अटक रही आशा लगी जी वह कोटि गरीस, हम तो मर जाएंगे यदि वो परसों के बाद में एक दो दिन की देरी हो जाती है तो हम जीवित नहीं रह सकते। भरत जी ने क्या कहा था रामचंद्र जी के विरह में, रामचंद्र जी और भरत जी से चित्रकूट में भेंट हुई और राम किसी प्रकार से माने नहीं, पिता के वचन पर अड़े रहे, तो भरत जी ने कहा जी अच्छी बात है, ठीक है, तो आप अपनी खड़ाऊ हमें दे दें और मैं उसे नंदीग्राम में रखूंगा और इसी की पूजा करूंगा और इसी से बातचीत करके जो कुछ होगा इसी से हम परामर्श करेंगे और प्रतीक्षा करते रहेंगे। गिनते हुए 1, 2, 3, 4, 5 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, फिर 1 महीना, 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 14 बरस गिनेंगे। और यदि आज जिस दिन को जा रहे हैं उस दिन के दूसरे दिन नहीं आ गए उसी दिन 1 वर्ष पूरा होता है तो क्या होगा, जल मरूंगा, एक सेकंड भी मैं प्राण धारण नहीं करूंगा। इसलिए रामचंद्र जी को जल्दी पड़ी थी, एक दिन पहले ही दौड़ करके चले आए, जीवित नहीं रह सकते। तो ऐसे ये गोपियां कह रही हैं हम जीवित नहीं रहेंगी उनके विरह में। तब यदि वो सुने जो गोपियां सब मर गई है तो वो जीवित रहेंगे, वो भी जीवित नहीं है। इसलिए हम तो इससे प्रार्थना करती हैं कि वो कोटि कोटि वर्षों तक जीवित रहें और हम भी इसी आशा से जीवित रहेंगे कि वो कब लौट करके आए। तुम तो सखा श्याम के, सुंदर के, सकल जोग के, आप तो जोगी हैं उद्धव, ब्रह्म में अपने चित्त को लगाने वाले हैं, आपको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हैं और जिसको जो कुछ कह देते हो वही हो जाएगा। तो कृष्ण के लिए ये कह देना कि वो कोटि कोटि वर्षों तक जीवित रहे, तुम्हारी बात सत्य होगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं, सकल योग के ईश, सूरदास रसिकन की बातें पूर्व मम जगदीश, हे जगदीश हमारी बातें पूर्ण हो। कृष्ण परसों ही लौट आए और यदि नहीं आते हैं तो हम विरह के अग्नि में जल करके खाक हो जाएंगे। जिस समय कृष्ण मथुरा में थे तो यशोदा जी ने एक संवाद भेजा, किचित में दोनों में संवाद आता रहता था। तो कृष्ण ने कहा कि हम जल्दी आ जाएंगे मैया, तू विलाप मत करो उमर। तो यशोदा जी ने कहा कि अब तो तुम्हें बेटा कहने में भी मुझे कुछ संकोच होता है, सुनते हैं कि तू कहता है वसुदेव और देवकी को तुमने अपना माता पिता मान लिया और देवकी को कहता है मैया और वसुदेव को पिताजी, और जन्म स्थान कहाँ, मथुरा में, तो तुम ऐसा कहता है तो मैं तो तेरी मैया नहीं, तेरी मैया तो वही है देवकी है, तो मैं तुम्हारी धात्री केवल पालन करने वाली थी, दूध पिलाती थी, बस यही तक तुम्हारा हमारा संबंध है, इसलिए हम मुझे छोड़ करके तू चला गया और देवकी को ही मैया कहता है, ठीक है मैं तो अब यही करूंगी, अब मैं ब्रज में नहीं रहूंगी, क्या करूंगी अब तो मैं भी आऊंगी मथुरा और देवकी रानी के महल के बाहर दरवाजे पर मैं अनशन करूंगी, जे मैया देवकी तू राज रानी है, हमें अपनी चेरी के रूप में रख लो, दासी के रूप में रख लो, मैं तुम्हारे घर में झाड़ू लगाऊंगी, मैं तुम्हारे घर में बर्तन बनूंगी, तू यदि होगा तो अपना जूठा दे देना और न होगा तो मत देना, मैं ऐसे ही तुम्हारे घर में झाड़ू लगाऊंगी और बर्तन बनूंगी, दासी का काम, एक बार केवल कृष्ण का दर्शन हो जाए, चले फैली हमको मैया न कहे, दासी के रूप में ही देखो। कृष्ण जब सुने तो क्या कहते हैं, बड़े दुखी हो गया, दुखी होकर के संदेश भेजा या उद्धव से ही कहा होगा, पथिक संदेश वो कही हो जाए, हे पथिक कहाँ जा रहा है, मैं मथुरा जा रहा, तो जरा कृष्ण से भेंट करना, तो कन्हैया से भेंट करके उसे कन्हैया से कहना पथिक सदेश वो कही हो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया मैया जनी पकुला है, मैं ब्रज जा रहे हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं किसी पथिक से, कहाँ जा रहा है, ब्रज को जा रहे हैं, वृंदावन में जाऊंगा, नंदगांव में जाऊंगा, तो जरा मेरी मैया से मिलना तो, और मैया को ये कह देना आमेंगे हम दोनों भैया मैया जनी अकुला येरी, कह देना जी तुम्हारे दोनों लड़के ने ये संदेश भेजा है, हम तुम्हारे बेटे हैं और हम प्रतिज्ञा करके कहते हैं, शपथ खा करके कहते हैं, हम तुम्हारे लड़के हैं, हम बहुत जल्दी से लौट आएंगे, कंस को मार दिया है और देवकी और वसुदेव जो तुम्हारे मित्र थे उनका बंधन भी हमने खोल दिया। अब रहस्य आ गया, दो एक कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें बाधा पहुंचाने वाले हैं, कंस के जो मित्र इत्यादि हैं, ससुर हैं वो जरासंध इत्यादि, उनको भी दंड दे करके मैं वहां की अवस्था शांत करके मैं दो एक दिन में अब आई गया समझ लो। फिर मैया जगी अकुलायरी जाको बिलग बहुत हम मानो सो कही पठियो थाय, तूने हमें ये कहा कि हम तुम्हारी माता नहीं है, यदि माता पिता रहते, नंद बाबा ने भी यही कहा था, जब पिता थे तो कौन पिता थे,
दशरथ जी
ही एकमात्र पिता थे, कैसे रामचंद्र जी वन में गए और जाने के बाद में दशरथ जी क्या बोले, राम 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 और बस सिद्धार्थ, तो पिता तो वही थे जो अपने पुत्र के शोक में एक क्षण भी नहीं रहे, और मैं कितना कृष्ण दिन हो गए गए और मैं नहीं मरा, जो सुधा जी भी करेंगे मैं भी अभी तक नहीं मरी, हमें मर जाना उचित था कि तुम मर नहीं गई, तो यथार्थ में मैं उनकी धाय थी। कृष्ण कहते हैं भैया ऐसी मत कहने मुझे, और कहने के शास्त्र में तो मर जाऊंगा और बलदेव भी जीवित नहीं रहेगा, कह लो कृतमानी जाको बिलग बहुत हम मान्यो, ओहो हम तुमसे किसी कारण से दैव की इच्छा से, हम अपनी इच्छा से नहीं, हम लोग ब्रज से यहाँ पर चले आए, तुझे ये कहना उचित नहीं था कि तुम हमारी दाय थी, अब तो हमारी छाती फट जाएगी ऐसी बात सुनकर के, खबरदार भैया ऐसी बात ना कहना, तुम्हारी कीर्ति में कहाँ तक बड़ाई करूं, तुमने मुझे जन्म से लेकर के और अब तक दूध पिलाया और मुझे बड़ा किया, कह लो कृति मानिए तुम्हारो बड़ो की ओ प्यार, कही वो जाए नंद बाबा सुन और कहीं बकरिए पाए, और पथिक मैया से तो ये कहना और पिताजी से नंद बाबा के चरणों को पकड़ करके ये समझाना जे कन्हैया ने तुम्हारा ये संदेश दिया है कि दो जन दुखी नहीं हो, धूमर घौरी गैया, धूमर घौरी गैया ये मरने न पाए, हम सुनते हैं कि वहाँ गाय हमारे बीरा में दाना खाना और घास खाना छोड़ दिया है, बछड़े दूध पीना छोड़ दिए हैं, सभी मर रहे हैं एक एक करके, तो बाबा से कह देना हमारी बड़ी प्यारी गायें और बछड़े हैं, कहीं वो बिना खाए मर न जाए, इसलिए बाबा उनको जरा देखें, मैं दो ही दिन में पहुंच जाता हूँ, यद्यपि यहाँ पर विभव बहुत है, तुम बिन कभू न कछु न सुहाए, यद्यपि यहाँ पर बहुत प्रकार के वैभव हैं जो वृंदावन में ब्रजमंडल में कहीं नहीं है, किंतु यहाँ का जितना भी वैभव राजपाट सब कुछ है मुझे एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ये काटने के लिए विष के समान ये दौड़ते हैं, सूरदास ब्रजवासी लोगन भेंट हृदय, कहते हैं सूरदास जी ओ कृष्ण को बड़ी टीस है हृदय में, बड़ा दुख है, जब ही कोई ब्रज का व्यक्ति मिलता है बस झट उसको हृदय से लगा लेते हैं, और नंद बाबा जो सुधा मैया सुबल सखा श्रीदाम सखा और गोपियों की बातें सबसे पूछते हैं, ऐसे उनकी विरह की भावना है। हमारे एक और बाधिन आपने पूरी आ गया चंडीदास की बंगाल के बड़े भारी सुंदर कवि हैं, कृष्ण भक्त हैं, कहते हैं गोपियां कह रही हैं जब कृष्ण मथुरा चले गए हम लोगों ने सुख के लिए कृष्ण से प्रति करके घर बसाया, प्रीति का कृष्ण का संसार बनाया, कृष्ण से बड़ी प्रीति करती थी, घर बसा लिया पूरा, किंतु वो घर क्या हुआ, कृष्ण मथुरा में चले गए और वो विरह में जल करके खाक हो, जिस सुख के लिए हमने कृष्ण से प्रीति की वो क्या हुआ, घर ही जल गया, अमिया सागरे स्नान करी थे सकल गौरव, हम कृष्ण को अमृत का सागर समझा और उनसे प्रेम करके उनसे प्रेम में उस सागर में प्रेम के सागर में गोता लगाने की सोची हम लोगों ने, किंतु क्या हो गया, वो समस्त सागर ही विष बन गया। और उसमें यदि स्नान किया तो क्या होगा, सब शरीर में जल पैदा हो गया। सखी मोर कपाले की, सखी की मोर कपाले लिखी, ओ ब्रह्मा जी ने हमारे कपाल में न जाने क्या लिख दिया। शीतल बोलिया चांद से भी, शीतलता को ठंडा पाने के लिए चांद की सेवा की, अर्थात कृष्ण चंद्र की हमने सेवा की, किसके लिए, हृदय को जुड़ाने के लिए। किंतु भानु किरण देखी, किंतु उसमें देखा का
सूर्य,
भानु माने सूर्य की किरण ताप देगा, कृष्ण चले गए और वहां से तपने लग गए। उचल बोलिया अचल चढ़ी, हमने प्रेम के मार्ग पर ऊंचा टेढ़ा मेढ़ा बहुत ऊंचे चढ़ाई की, किंतु हुआ क्या, वो ऊंचा नहीं, एकदम विरह का सागर वो में हम नीचे अतल तल में चली गए। लक्ष्मी चाहते दारिद्र वह, धन की आकांक्षा की और हुआ क्या, धन सब कुछ बर्बाद हो गया। एक जुआरी सब कुछ दाव पर लगाया, लगाते लगाते अपने घर को भी लगा दिया, यहां तक कि अपनी स्त्री को भी दाव पर लगा दिया, सब कुछ हार गया। और हारने के बाद में उसकी क्या दशा होती है, एकदम थकित और शिथिल हो जाता है, कहीं भी रहने के लिए ठौर भी उसको नहीं रहती है। आज कृष्ण से प्रीति करके जुए पर हमने दाव पर प्रीति लगाई और उसमें के सब कुछ हार गया, कृष्ण चले। अब तो हमारी दशा ऐसे जुआरी की भांति है जो सब कुछ बर्बाद होने के बाद लूट जाने के बाद, और वो ऐसा हो जाता है। लक्ष्मी चाहते दारिद्र बढ़िलो, मानिक हार आलू हाले, मानिक के इत्यादि सब न जाने कहां चला गया। नगर बसाला, नगर बसाया कैसा, प्रीति का नगर बसाया कृष्ण से, सागर बाधी नाम नगर बसाया और उसके ऊपर में पुल बनाया, पुल कैसा, पुल है हमारे जो गुरुजन हैं, सास हैं, ससुर हैं, बड़े भाई हैं, माता और पिता हैं, अरे किसे प्रेम करने जा रही है, इस दुर्वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया, उसको पुल बना करके चली गई। लोक लज्जा जो कुछ था उसको टपक करके चली गई, पुल बनाकर, मन इसकी भी परवाह हमने नहीं की। नगर वशालम सागर बाधिलम, सागर को भी बांध दे, सागर माने उस लोक लज्जा को कोई भी पार नहीं कर सकता है, स्त्रियों का विशेष करके लज्जा सबसे बेसी अधिक है, तो कुल की लज्जा सब कुछ आर्य धर्म इत्यादि सब को जलांजलि दे करके उसकी हमने कोई भी परवाह नहीं की, कृष्ण से प्रीति की, लोग जो कुछ कहते हैं वो कहने दे। सागर सुखा, किंतु हुआ क्या, सागर सुखा और मानिक लुका, किंतु वो सागर भी सुख गया, प्रेम का सागर जिसे प्रेम किया वो चला गया, सुख गया। मानिक लुकाल, प्रेम रूपी मणि भी खत्म हो गई। अभागनी कर्म दोषी, अभागनी ऐसी कर्म में जाने क्या लिखा, ऐसी दुर्भागनी कि कभी भी सुख शांति नहीं मिली, प्यास लगी या जलद से भी बड़ी जोर से प्यास लगी थी, सोचा जब ही मेघ पानी आएगा, अभी पानी आने की बात थी ना जब हवा आई, किंतु पानी नहीं आई, चापक तरस रहा होगा, प्राण जाएगा किंतु नदी का पानी, सागर का पानी, यहाँ तक कि गंगा जमुना का भी पानी नहीं पिएगा, वो पानी कहाँ का पिएगा, और वो सब समय सब आकाश का पानी नहीं पिएगा, वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा, नहीं तो मर जाएगा, मर जाएगा। तो तुझे प्यास नहीं है, तू कुएं से पानी पी ले, ये नदी में पानी है तो मैं नीचे करके नहीं पीऊंगा, आकाश से पीऊंगा केवल वही स्वाति नक्षत्र का पानी। ऐसे ही कहते हैं प्यास लगी जलद से बिनु वज्र पड़िया गया, किंतु ऊपर से क्या हुआ, वज्र गिर गया। वो चातक का मुख किधर रहता है,
ऊपर
ऊपर, चाहे वज्र पड़े चाहे स्वाति नक्षत्र का पानी मिल जाए, किंतु वो नीचे दूसरी जगह का पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही ये कह रही है कि आज हम प्यास से ऊपर देख रही थी कृष्णचंद्र की ओर मेघ की तरफ में, और वहां से वज्र पड़ गया, आगमन कृष्ण छोड़ करके चले गए। कहे चंडीदास पीड़ित कानू, कानू रीति मरम रही रसो। वो क्या कहती हैं चंडत चंडत दास की, उनको कहते हैं कि कानू की प्रीति हृदय में एक सेल की भांति चुभ गई जो निकल नहीं रही है। तो गोपियों की विरह व्यथा, कहते हैं कि कृष्ण से अधिक मत जाओ कृष्ण की तरफ में, उनसे प्रीति मत करो, नहीं तो जीवन भर रोना पड़ेगा। विशेष करके गोपियों जैसा यदि करोगे तो गोपियों जैसा जीवन भर रोना पड़ेगा। उनसे मिलन भी हो जाने के बाद में कोई आनंद होगा तो भैया मत सोचो वो बात, ये रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है जैसा ये गोपियां करेंगे। नारद जी ठीक उसी प्रकार से कहते हैं। रूप गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं वृंदावन मत जाना, और खबरदार यदि जाना भी केसी घाट मत जाना। किसी प्रकार से केसी घाट यदि चला जाना तो वहां पर गोविंद जी का दर्शन मत करना, आने तो फिर घर लग करके नहीं आना पड़ेगा। उनका रूप ही ऐसा सुंदर है, चांद चितवन भी उनकी ऐसी टेढ़ी है। नारद जी विप्रलंब रस का वर्णन करके, मैंने वियोग का भाव, वियोग प्रेम को वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यदि वियोग ना हो तो मिलन में जो आनंद है वो कभी नहीं बढ़ेगा। जिस नदी में पानी तो है किंतु प्रवाह नहीं है, धारा नहीं है, तो पानी सड़ जाता है। साधु के लिए भी कहा गया है अरमता जोगी
बहता पानी,
अब बहता पानी निर्मल बहता है। कुएं में पानी नहीं खींचा जाए ना बाल्टी से तो वो हिलता रहना चाहिए। तो ऐसे ही प्रेम में भी वैसे ही बातें, वियोग के बाद में प्रेम की अनुभूति अधिक होती है। कृष्णचंद्र जी मथुरा जी चले गए और ब्रजवासी स्थावर जंगम सखा, उनके घर वाले माता पिता भाई बंधु दीरन मयूर जो कुछ भी थे सब उनके दीरन में। उस समय में उनके हृदय में तीव्र विरह की ज्वाला, विरह मैंने वैसा जैसे प्रयाग प्रलय में अग्नि होती है। कृष्ण भी मथुरा चले गए हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहे, मेरे जाने से और आग बढ़ जाएगी। उद्धव जी गए और अपने सोने के रथ में ही बैठा लिया और अपनी पगड़ी और अपने सब पीले वस्त्र अपने हाथों से पहने और जोर जबरदस्ती उनको रथ में बिठा दिया और बिठा करके भेज दिया। कौन सा रथ, जिसको कंस अपने व्यवहार में रखता, सोने का सब चक्के से लेकर के सब सोने के बने, उस पर गए। उनके जाने पर उद्धव जी संध्या के समय में पहुंचे और उस रथ को देख करके सब ब्रजवासी लोग कूद पड़े, ये कौन आया, कोई अक्रूर तो नहीं आ गया, अब किस लिए आया, बातें करने लगे। पुरुष लोग तो जैसे तैसे, स्त्रियां सब एकत्रित हो गई और बातचीत करने लगे। एक कहती के देखो ये अक्रूर फिर आ गया, भीतर में तो विरह ज्वाला है, बस उसी के अनुरूप बातें निकलेंगी। करें ये सखी किस लिए आया, अब तो कोई जरूरत इसकी है नहीं, हमारे श्याम सुंदर तो चले गए तो इसको आने की क्या जरूरत है, तू नहीं जानती है ये किस लिए आया। अरे कंस तो मर गया है ना, उसका श्राद्ध होना है तो श्राद्ध में पिंड देना चाहिए, ब्राह्मण लोग पिंड दिलाते हैं श्राद्ध में अंतिम समय, तो उसका पिंड देना है तो वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो उन लोगों ने सोचा जब ब्रज में जितने पुरुष और स्त्रियां हैं वो कृष्ण के अतिरह में मर गई होंगी, तो उनका हृत पिंड निकाल लिया जाए और उससे उसका तर्पण किया जाए। बड़ी गंभीर होकर के रो करके कह रहे हैं। तो तीसरी बात यह है जो भैया, ये तो बात तो ठीक है, किंतु इस सोने के रथ में वो क्यों आया, क्या कारण है? वो तो लकड़ी के रथ में भी आने से साधारण रथियों में या बैलगाड़ी आ जाती या और कोई बात होती। ब्रज में तो बैलगाड़ी ही चलती है, नंद बाबा के छकड़े हैं। अरे तू नहीं जानती है, अब जी यहाँ जिसको हम आर्य पुत्र कहती थी, नंदनंदन कहती थी, अब वहाँ वो जा करके मथुरापुरी के राजा बन गए हैं, मालिक अब वही हैं। झूठ मूठ को उन्होंने उग्रसेन को राज तिलक करा दिया, किंतु मालिक कौन है? राजा
कृष्ण,
राजा वही कृष्ण ही। देखा जी भाई, अब तो इतने हम अगाध संपत्ति के मालिक हो गए हैं, राज्य के मालिक हो गए हैं, तो ये माता पिता को कैसे दिखलाया जाए? ये हम बड़े वैभव में आ गए हैं, वहां पर तो गैया चराते थे, थक जाते थे, अब बिना जूती और बिना छाता का चलते। अब देखो जो तुम्हारा पुत्र कितना बड़ा हो गया है, ये समझो, जिसके दूध सोने के रथों में चलते हैं यहाँ आए हैं। इसलिए यह भाव दिखलाने के लिए जैसे ये वहाँ का महाराजा बन गया है और इसकी इतनी अथार संपत्ति और वैभव हो गया है, ये देख। तो यदि पिता माता ये समझें जी हमारा बेटा प्रभारी राजा हो गया है, प्रधानमंत्री हो गया है, राष्ट्रपति हो गया है, तो मैया को कितना आनंद होता है, है? तो ये शायद दिखलाने के लिए ही उन्होंने ये अपने दूत को, साधारण दूत को भी भेजा है सोने के रथ। ये कहते हैं कि बड़ी लज्जा की बात है, मैं आया रथ पर मुझे चढ़ करके नहीं आया। इतनी ताना की बातें हमने तो जीवन में कभी सुनी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद में वो जब निकले, एक कहते कि अरे भाई ये कौन है? श्याम तो है किंतु श्याम नहीं है, क्या हुआ? श्याम है माने रंग तो श्याम जैसा, किंतु वो श्याम नहीं है, किंतु कपड़े तो वही हैं। तो ये राजकीय कपड़े जैसे पहले जैसे ये कपड़े नहीं हैं, तो पीले जरूर, किंतु सोने की जरियां और ये सब लगी हुई है इसमें। बड़ा बंठन करके आया है, दूत बना है, दूत है उन्हीं का, तो तुम कैसे समझे कि ये दूत है? तो ये हमारी नाके कभी भूल नहीं कर सकती, कृष्ण के अंगों का ये गंध, ये आज तक तो उन्होंने देखा है, इसलिए हमें ये अंगों का गंध मालूम होता है जी, ये कपड़े लगते उन्हीं का है और किसी का होगी। तो ये उसको भेजे हैं कहना पर, ये ब्रजवासी लोग देखे जो अब हम साधारण व्यक्ति नहीं रहे, अब गौवा चराने वाले और केवल चरवाहा नहीं है, अब तो राज राजेश्वर। सोचते हैं कि भैया पृथ्वी फट जाती, अब मैं इसमें भीतर चला जाता, ये रथ पर चढ़ करके क्यों आया और इतना ठाट बाट से मैं क्यों आया, उसमें तो मुझे पता नहीं था। लोग मुझे कहते हैं कि बृहस्पति का शिष्य परम बुद्धिमान कृष्ण के सखा, आज तो मुझे कोई एक उत्तर भी नहीं सूझता है इनके। गोपियां वेदांत और वेद नहीं पढ़ी थी, किंतु वेद जिनके मुख से सृष्टि हुई है, जिनके श्वास से वेद बना है, और वो जो भगवान है उनको भी पढ़ाने वाली है, पाठ पढ़ाने वाली, ये साधारण नहीं। इसी तरह की बातें करने लग गई और ये बहुत संकुचित हो गए, और मिलने के बाद जो बात हुई तो वो तो पीछे की बात है। तो ऐसे ये विरह में तड़प रही हैं और कृष्ण भी उसका ताप सह रहे हैं मथुरा में रह करके। तुम्हें ये नारद जी कह रहे हैं, ऐसे गोपियों के जो विचार हैं और भाव हैं वही प्रेम तत्व, प्रेम तत्व को वर्णन करना बड़ा भारी दुष्कर, बड़ा कठिन है प्रेम का। बस इतना ही समझो प्रेम की, और इसे आगे मैं नहीं कर सकता। अब विशेष करके गोपियों की प्रेम की बातें, तो मान ले कि कोई वक्ता भी कोई जगत में नहीं है, और यदि कहने वाला भी कोई है तो तुम्हारी जैसी परिस्थिति है तुम नहीं समझेगा, सखाओं को तक तुम समझेगा क्योंकि सख भाव संपन्न थी, किंतु उनकी बातें निराली हैं, तुमको समझाने से भी गोपियों की बातें और उनका प्रेम का भाव और विरह तुम समझने योग्य नहीं, तुम्हारी अनुभूति होगी नहीं। इसलिए वर्णन करना एक तो हमारे वश की बात नहीं, और विशेष करके तुम उसके अनाधिकारी, हम दोनों अधिकारी नहीं है, अनाधिकारी नारद जी अपने लिए भी कह रहे हैं और उस गोप कुमार के लिए भी कह रहे हैं, दोनों को अनाधिकारी बतला रहे हैं। इसलिए जो अधिकारी नहीं है, एक छोटा सा बच्चा उसको जज के कुर्सी पर बैठा देने से बस जज हो जाएगा, इस तरह से प्रेम के अधिकारी होते हैं। तो तुम भी प्रेम के, उस प्रेम के अधिकारी हो, श्रृंगार रस भावना के, मधुर रस के तुम अधिकारी नहीं हो। शाराधिका भगवती क्वचित इच्छते चेत प्रेमा तदानुभव मृच्छति मूर्तिमान सकेत चेत गदि तुम एष तया तदैव श्रूयते तत्त्वमिह चेत भविष्यति स्वशक्ति। ओ तुम तो अनाधिकारी, हम भी अनाधिकारी, इसलिए वो सब बातें यहाँ पर संभव पर नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रेम वाला व्यक्ति हो, गोपियों के प्रेम का रसिक कोई व्यक्ति यदि हो और साक्षात रूप में आकर के अपने अनुभव की बातें कुछ कहें, और वो श्रोता भी उसके लिए योग्य हो, तो ये संभव पर हो सकता है। तो ऐसे प्रेम की वक्ता कौन हो सकता है, तो उसके लिए करें विशेषता परम भगवती श्रीमती राधिका जी। यदि स्वयं आ जाए कहीं किसी प्रकार से, वो राधिका जी कैसी हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, भंडार साक्षात हैं, वो यदि आ जाए उनका दर्शन हो जाए और उनकी चरण की धूली यदि लग जाए सिर पर किसी तरह से, और कृपा करके यदि वो समझाएं कुछ बतलाएं, तो ये प्रेम की बातें कुछ समझ में आ नहीं नहीं हो सकता है। वे प्रेम के विषय में कुछ बतला सकते, और यदि ऐसा कोई श्रोता नहीं होगा तो बतलाने पर भी नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु जी के ऐसे सेवकों में से, उनके परिकरों में से केवल अढ़ाई व्यक्ति की ही बात सुनी जाती है जिसको वो बतलाते थे,
साढ़े तीन
और कोई नहीं आता था, साढ़े तीन, साढ़े तीन मैंने अधिकार के अनुसार, तीन तो थे हमारे स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी और एक थे सिक्की मैं जी। स्वरूप दामोदर जी ललिता जी के अवतार हैं वो तो हैं, और विशाखा के हैं राय रामानंद, और सिक्की मैती भी कोई चंपक लता या कोई सखी है पूर्व लीला, और उनकी जो बहन है क्या महंती
माधवी देवी,
माधवी देवी
उनको ही तो चंपा लिखा कहा गया महाप्रभु ने
कोई आदि कहा गया, किस लिए अधिकार के रूप के लिए कहा गया, महिला के वजह से नहीं, उनका यहीं तक सुनने का अधिकार, इसलिए आदि में उनका नाम आया। महाप्रभु जी से जब भाव विभोर रहते थे तो दिन में आकर के बातचीत करती थी और सुनती थी, रोती थी ऐसे भाव विभोर हो जाए, एकांत में जैसे राय रामानंद और सब बैठते थे। तो ऐसा अधिकारी होना चाहिए, और नहीं अधिकारी नहीं होगा तो श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है नहीं तत् समाचरित जाति मनुष्यपि अनिश्वर विनश्यत आचरण मौभ्यात यथा रुद्रो अभ्युजम विषम। शंकर जी विष पान कर सकते हैं और विष पान करके हजम कर लिया और गले में ही उसको रख लिया, इसलिए नीलकंठ बन गए, नीचे नहीं लिया क्योंकि श्याम सुंदर की आराधना करते थे हृदय में, दूसरा कोई यदि पीसपान कर ले तो क्या होगा? इसी तरह से ये श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्याय और वो जो गोपी प्रेम है साधारण आदमी के सुनने के लिए नहीं, इसको बहुत छिपा करके शपथ पूर्वक रखा गया है साथ। इसलिए श्रीमती राधिका जी यदि कहीं आ जाए और उनकी कृपा हो जाए तो वो समझा सकते हैं, किंतु वो भी अनाधिकारी व्यक्ति को नहीं देंगी। अधिकारी होना चाहिए जिसको ब्रज भाव में लोभ है, जिसकी महत्ता को जानता है। बंदर को अदरक दे दिया जाए तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, प्रासंगिक में देगा काट करके फेंक देगा। इसलिए कि यदि वैसा कोई वक्ता होगा, यदि कहना आरंभ कर दे और श्रोता यदि सुनना आरंभ कर दे तो प्रेम उनको मोहित कर देगा, दोनों मूर्छित हो जाएंगे और आगे बात नहीं हो सकेगी। ये भी एक कारण, इसलिए ये संभव पर नहीं है। तथापि प्रसन्नियों के में श्रीमती राधिका जी यदि इच्छा करें तो ऐसा संभव पर हो सकता है। कृष्ण चंद्रस्य महावतार तात्रिक निज प्रेम वितानकारी स्याद् वा कदाचित् यदि राधिकाया प्रेम्नानुभूति तदुपैत्य उपत् तथापि। अथवा श्रीमती राधिका जी अवतार ले करके आए और बतलाएं, अथवा कृष्णचंद्र जी का कोई ऐसा महा अवतार हो और वो अवतार लेकर के यदि आए, अथवा राधिका जी ही अपना कोई अवतार लेकर के आ जाए